ओम शांति। अभी हमारे सम्मुख ब्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पधारे हैं। बाई जी को हम बड़ी दिल से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बाई जी को तो सब जानते ही होंगे। आप इस ईश्वरीय ज्ञान में 1986 में प्राप्त किया है। आप 1995 से ग्लोबल हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर में पूर्ण रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप 1998 से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है कैड प्रोजेक्ट। इस द्वारा अनेक आत्माओं को लाभ हुआ है, अनेक आत्माएं बाबा के बच्चे बने हैं। आप में तो बहुत विशेषताएं भरी हुई हैं। आपको देखने से ही सबका योग लग जाता है, ऐसे आप योगी आत्मा हो। अभी बाई जी से हम सुनेंगे अमृत वेले का महत्व क्या है, इस पर बाई जी हमको प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी,
ओम शांति। अभी हम परसों ही हमने बाबा से मुरली सुनी। बाबा के महावाक्यों में हमने सुना कि बाबा रोज सुबह सुबह चक्कर लगाता है रोज अमृत वेले हम सबके पास देखता है हम क्या कर रहे हैं। और किसी भी ब्राह्मण के लिए अमृत वेला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि अगले हम लगभग एक घंटे में आपसे अमृत वेले के विषय में कि पावरफुल अमृत वेला किसे कहते हैं, पावरफुल अमृत वेला कैसे करें, और अमृत वेले के इस पावरफुल अमृत वेला के द्वारा हम अपनी स्थिति कैसे बना सकते हैं, अपने विक्रम विनाश कैसे कर सकते हैं, और भी कई सारी इससे बातें, किस रिलेशन में बातें, वैज्ञानिक विधि से भी हम समझें अगर इस बात को, तो किस तरह से हमारे शरीर पे क्या असर होता है अमृत वेले का। अगर अमृत वेला मिस करते हैं तो उसका क्या असर होता है, अगर करते हैं अच्छे से तो उसका क्या फायदा होता है, तो हमारे तन मन का स्वास्थ्य भी कैसे अमृत वेला से बनता है, वो भी हम आपसे इस बात में चर्चा करेंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है अगले एक घंटे के लिए अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें ताकि मन बुद्धि को एकाग्र कर सके। एक घंटे के लिए सभी मोबाइल स्विच ऑफ करें और फिर हम एक घंटा पावरफुल एकाग्र स्थिति में बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे ताकि हमारी स्थिति एकदम से हमें, क्योंकि अमृत वेला के ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। अगर हम अमृत वेला मिस करते हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं। तो अभी हम इस बात पर आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का फाउंडेशन है। जो अमृत वेला दिन का आदि है ना, जैसे दिन की शुरुआत है, तो जो अमृत वेला पावरफुल करता है उसका सारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। वो किस तरह से हम करें वो हम समझेंगे। इसके पहले हम 2 मिनट सभी दोबारा से व्हाइट लाइट में साइलेंस में बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। कोई भी बातें अगर मन बुद्धि में है तो उसको मन से निकाल देंगे। अगले एक घंटे के लिए हम ये अपने आप को अपॉइंटमेंट दे देंगे कि हमें एक घंटा कुछ भी और सोचना नहीं है। मन मेरा है ना, तो मन के हम मन के मालिक हैं, आत्मा मन का मालिक है। तो मन को ऑर्डर कर देंगे कि अगले एक घंटे के लिए हमको सिर्फ डायमंड हॉल में सिर्फ इसी बारे में सोचना है या सुनना है, चिंतन करना है कि अमृत वेला क्या है, और पावरफुल अमृत वेला, अनुभवी मूर्त स्वरूप का अमृत वेला, शक्तिशाली अमृत वेला क्या होता है, और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उससे विक्रम विनाश कैसे होते हैं, और भी उससे क्या फायदे हैं। ठीक है, चलिए अभी एक मिनट के लिए हम लोग दोबारा से मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। जानते। सबसे पहले तो हम समझे कि अमृत वेला किसे कहते हैं, अमृत वेले का समय कौन सा है। अमृत वेला जैसे बाबा ने कई बार मुरली में आपने सुना भी होगा, अमृत वेला 12 बजे से पहले का समय क्या कहलाता है, 10 से 12 का समय क्या होता है, तमो प्रधान समय होता है, और 12 बजे के बाद 12 बज के 1 मिनट पे कहें तो अमृत वेला शुरू हो जाता है। किंतु साइंस के हिसाब से हमारे यहां दोनों ब्रेन्स के बीच में, राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में हाइपोथैलेमस है और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो जगह है ना, वहां पर आत्मा का निवास है। और आत्मा क्या है, आत्मा एक ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसमें से 7 एनर्जी निकलती रहती है, 7 गुण जो आप समझते हैं ना, आत्मा के 7 गुण है। जैसे बल्ब से कौन सी लाइट निकल, 2 चीज निकल रही हैं, लाइट और गर्मी, ऐसे आत्मा से 7 एनर्जी निकलती रहती हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये 7 एनर्जी निकलती रहती हैं। तो और इस एनर्जी के कारण हाइपोथैलेमस जो है वो स्थान है इंसान के दोनों मस्तिष्क का भी मास्टर है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। और इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सदा ही 37 रहता है ना, 98.4 रहता है, चाहे हम 50 डिग्री टेम्परेचर में चले जाएं, चाहे हम कहीं पहाड़ पे चले जाएं, चाहे -10 पे चले जाएं। ऐसे यहां पर एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहती है, क्लॉक माना अंदर एक घड़ी रहती है हाइपोथैलेमस में, वो घड़ी के अनुसार अगर हम हर कार्य करते हैं तो हमारा उस कार्य को करने में एनर्जी कम खर्च होती है, थोड़ी एनर्जी में ज्यादा कार्य हो सकता है, प्लस हमारी जो उस क्लॉक, उस घड़ी के अनुसार कार्य करने में, जैसे मान लीजिए उसके अनुसार हम उठते हैं तो हमें उस समय उठते ही अगर योग लगाते हैं तो एकदम लग जाएगा। अगर उस समय हम सोते हैं, उसका सोने का समय भी उसमें फिक्स है, उस समय सोते हैं, हमें सोते ही नींद आ जाएगी, नेचुरल नींद आ जाएगी। तो ये जो है हमारे हाइपोथैलेमस में, यहां पर जो घड़ी लगी है उस घड़ी के अनुसार हमें रात के 12 बजे तक एक नींद की साइकिल पूरी करनी चाहिए, और एक नींद की साइकिल 2 घंटे की होती है, तो इसका अर्थ हमें कितने बजे सो जाना चाहिए, 10 बजे सो जाना चाहिए। अच्छा, परमात्मा पिता हमारा जो मीठा बाबा है वो क्या करने के लिए आए, जब हम आत्माएं तमोप्रधान बन गई तो हमने अपनी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया, अपनी मर्जी से सोने लगे, जिस समय हमें टाइम मिलेगा प्रेशर के हिसाब से, मेरी जीवन की दिनचर्या के हिसाब से मैंने अपने सोने का टाइम बदल दिया, उठने का टाइम बदल दिया, खाना पीना करने का टाइम बदल दिया, जिससे सब क्या हुआ, सब रोगी बन गए, सब बीमार हो गए, सब दुखी हो गए। तो शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए तो उन्होंने हमारे लिए एक दिनचर्या सेट करके दी। तो जब हम 10 बजे सो जाएं अगर हम, और सोने से पहले भी अगर हम, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज बाबा ने इस बार मुरली में भी कहा, सोने के पहले सारी दिनचर्या अपने बाबा को दे दें कि आज सारा दिन में हमने क्या किया, अपने दिन को कैसे बिताया, अपने मन और बुद्धि को कैसा चलाया, हमारे मन में क्या क्या विचार आए, क्या हमने कोई गलत काम किया, क्या श्रीमत के खिलाफ चले, या किसी ने हमको कुछ कहा तो क्या हमें क्या फील हुआ। वो जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी मां को सब कुछ बता देता है, ऐसे ही हम अपने पिता को एक लेटर लिखें और लेटर लिख करके अपने मन की सारी बात, मेरे मीठे बाबा आज सुबह से लेकर 4 बजे से आप उठे हैं, जैसे उठे थे स्कैन कर लें, 5 से 6 में क्या हुआ, 6 से 7 में क्या हुआ, 7 से 8 में क्या हुआ, 8 से 9 में क्या हुआ, वो सारी बातें जो भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, एक लेटर लिख के बाबा को बता दें, फिर अपना चार्ट भर लें اور پھر بابا کو یاد کر لیں. مطلب 9:30 بجے اگر ہم اپنے آپ کو ڈے کو اپنے دنچریا کو اپنے کام کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد اپنا لیٹر لکھیں. لیٹر لکھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں, ایسے ہی چارٹ بننے میں سر 3 منٹ لگتے ہیں, اور پھر بابا کو 5 منٹ یاد کر کے سو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیں جو 10 سے 12 کی جو پہلی نیند کی جو سائیکل ہے اس میں ہمیں ہر سائیکل میں 2 طرح کی نیند ہوتی ہے, ایک سپنے والی نیند اور ایک گہری نیند. تو اگر ہم 10 سے 12 سوتے ہیں تو اس میں سے 10 منٹ ہی ہمیں سپنے کی نیند آتی ہے. اگر ہم اس طرح سے کر کے سوتے ہیں تو لیٹر لکھ کے, اس کو کہتے ہیں آڈٹ, انگلش میں کہتے ہیں آڈٹ کرنا. ودیش میں بھی لوگ جو گیان میں نہیں چلتے وہ بھی ان کے لیے بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے دن کو آڈٹ کر لیں, آج سارے دن میں ہم نے کیا کیا, کیا اچھا کیا, کیا برا کیا. تو آڈٹ کر کے جو سوتے ہیں اور بابا کو یاد کر کے سوتے ہیں تو ان کی پہلے دن کی پہلی جو 2 گھنٹے میں سے 10 منٹ سپنے کی نیند آتی ہے, 110 منٹ گہری نیند آتی ہے, جسے ہم ڈیلٹا سلیپ کہتے ہیں. ڈیلٹا سلیپ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہمارے برین کی جو کرنٹ ہے, برین سے کرنٹ نکلتی رہتی ہے, اس کو ہم ناپ سکتے ہیں. اور ہماری اس میں کرنٹ ہماری کیسی ہوتی ہے, ہماری جو کرنٹ جو ہوتی ہے اس میں 1 سے 4 تک اس کی ایسے سے کرنٹ پھیلتی ہے 1 سیکنڈ میں, مطلب سلو, اسے ڈیلٹا ویو کہتے ہیں. اور ڈیلٹا ریتم کیا کرتی ہے, ہمیں فریش کر دیتی ہے, آنند کی استھتی ہوتی ہے. اور پھر 12 سے 2 کی نیند میں صرف 30 منٹ سپنے آتے ہیں, اور 2 سے 4 میں ہمیں 50 منٹ سپنے آتے ہیں. سپنوں سے ہم فریش نہیں ہوتے ہیں, گہری نیند سے ہم فریش ہوتے ہیں. تو پاورفل امرت ویلا کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ اچھی نیند لے لیتے ہیں, گہری نیند اگر آپ کو آتی ہے تو آپ صبح صبح فریش ہو کے اٹھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ساری رات نیند ہی نہ آئے تو آپ صبح امرت ویلا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, صبح اٹھ ہی نہیں پائیں گے, اٹھیں گے تو سستی ہوگی, تھکاوٹ ہوگی, تو آپ امرت ویلا کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں 10 بجے سونا اتی آوشک ہے اگر ہمیں پاورفل امرت ویلا کرنا ہے. بلکہ 9:30 بجے ہمیں اپنے دن کو کلوز کر دینا چاہیے, اور اس پر جو ہے پھر ہمیں لیٹر لکھ کر کے بابا کو اپنے من بدھی کو خالی کر کے, اور پھر اپنا چارٹ بھر کر کے. اس بار بابا نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے, پرسوں مرلی میں بابا نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنا چارٹ لکھیں, اپنی دنچریا, منن کیسے دن بتایا, منن کیا, منسا سیوا کی, کیسے اپنے من کو لگایا سارا دن میں, یا واچا سیوا کی یا کرمنا سیوا کی, جیسے بھی کیا, وہ سارا دن کا چارٹ بابا کو سونے سے پہلے دینا, اور پھر بابا کو یاد کر کے سو گئے. تو اس طرح سے اگر ہم سوتے ہیں تو 6 گھنٹے کی جو نیند ہے, یہ 5.5 گھنٹے کی نیند ہے, اس میں ہمیں اگلے 24 گھنٹے کے لیے ہم فریش ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم دیر سے سوتے ہیں, آپ سمجھ لیجئے اگر ہم 11 بجے سوئے تو کیا ہوگا, ہماری جو پہلی سائیکل ہے وہ پوری نہیں ہوگی. تو امرت ویلے کا جو سمے نا 1 گھنٹے کا 4 سے 5 کا سمے, وہ ہمارا خراب ہو جائے گا. ویسے امرت ویلے کا سمے 2 بجے شروع ہو جاتا ہے. کیوں امرت ویلے کا سمے میں 2 بجے کہہ رہا ہوں, کہ جو ہمارے ہائپوتھیلمس اور پیٹیوٹری گلینڈ ہے اس میں سے ہارمونز نکلتے ہیں, 2 بجے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور 5 بجے تک نکلتے رہتے ہیں. اور ان کا کنیکشن آنند سے ہے. جتنا ہماری آنند کی استھتی میں ہوتے ہیں اتنا ہی ادھک ہارمونز بیلنس میں نکلتے ہیں. اگر یہ ہارمونز بیلنس میں نکل جائیں تو کیا ہوگا, اگلے 24 گھنٹے میں آپ کی جو بھی شریر میں تکلیفیں ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, ہڈیاں خراب ہیں, یا آپ کو ایسیڈیٹی بنتی ہے, مائیگرین ہوتا ہے, یا سانس کی تکلیف ہے, موٹاپا ہے, وہ سب اگلے 24 گھنٹے پہ کم ہو جائے گا. اگر آپ نے آنند کی استھتی میں نہیں آئے اس بیچ میں, اسپیشلی 4 سے 5 کے بیچ میں ایک ریسرچ آئی تھی پیچھے ابھی, کہ کم سے کم 20 منٹ آنند کی استھتی ہونی چاہیے, کم سے کم 20 منٹ. تو اگر 20 منٹ آپ آنند کی استھتی میں آ جاتے ہیں تو آپ کی سارے کے سارے وہ ہارمونز 18 ہارمونز بیلنس میں نکل جاتے ہیں. اور اگلے 24 گھنٹے میں آپ کی جو بھی تکلیفیں ہیں, من کی یا تن کی, ڈپریشن ہے اگر آپ کو یا کوئی اور پرابلم ہے, وہ کم ہو جائے گی. अगर आपने अमृत वेला मिस कर दिया या अमृत वेला किया भी किंतु आपने आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो क्या होगा, अगले 24 घंटे में जो भी तकलीफें बढ़ जाएंगी, भले आप दवाई ले रहे हैं तो भी बढ़ जाएंगे। तो पावरफुल अमृत वेला करने का महत्व, पावरफुल अमृत वेला किसे कहते हैं इसके बारे में हम थोड़ा गहराई से जानेंगे। पावरफुल अमृत वेला तभी हम कर सकते हैं अगर पहले सारा दिन हमारा चिंतन ठीक चला हो, बाबा की श्रीमत पे चले। अगर जैसे मुझे सारा दिन की भी दिनचर्या सुबह उठने से लेकर शाम तक अगर श्रीमत पर चली है, श्रीमत पर रही है, मनमत परमत पर नहीं चली है, तो कल सुबह जो मेरा अमृत वेला होगा वो बहुत पावरफुल होगा। एक्चुअली अमृत वेला इनाम है, आज सारा दिन मेरे दिनचर्या पे ठीक चलने का इनाम है अमृत वेला, कल पावरफुल अमृत वेला। अगर कहीं आज मैंने दिन में व्यर्थ संकल्प चलाए हैं, व्यर्थ समय गवाया है, तो अगले दिन अमृत वेले पर मुझे नींद आएगी। जैसे आप सोच देखते हैं ना, कई बार अमृत वेले में बैठते हैं तो नींद आने लगती है, थकावट होने लगती है, हालांकि हम सारी रात सोए हैं तो भी अमृत वेले हमको फ्रेश नहीं लगता है, नींद आ जाती है। क्यों नींद आती है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक बार आप गहराई समझ गए ना, फिर आपको भी गलती, जैसे हमारा जो मन है ना, मन बच्चे के समान है, मन को आप कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे 4 बजे उठ के अमृत वेला करना ही है। भले उठ के बैठ गए तो भी महत्व नहीं ना, आपने पावरफुल तो किया ही नहीं तो फायदा तो नहीं होगा। तो मन को हमें जैसे बच्चे को समझाते हैं ना प्रॉपरली कि तुम ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा, तो मन अगर एक बार समझ जाए फिर कभी गलती नहीं करेगा। जैसे छोटे बच्चे को कहें ना कि आप ये चीज, ये काम नहीं करना, आपके सामने नहीं करेगा किंतु जैसे ही आप निकलेंगे घर वहां से तो क्या करेगा, वही काम जरूर करेगा। किंतु आप बच्चे को समझा दें, नहीं बच्चे इसमें इसमें करंट लग सकता है, आपको बिजली का स्विच है, इसमें करंट लग सकता है, इसमें मर जाते हैं, इसमें फिर ऐसा हो जाता है, तो बच्चा फिर कभी गलत नहीं करेगा। तो इसी तरह से मन को आप पूरा समझा दीजिए साइंटिफिकली, वैज्ञानिक विधि से या बाबा की श्रीमत के अनुसार मुरलियों के पॉइंट से मंथन करके समझा दीजिए, तो मन को अपना दोस्त बना लीजिए, अपना सहयोगी बना लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं, जैसे बाबा ने कल भी परसों मुरली में बताया, 3 भाग्य तो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं। कौन कौन से 3 भाग्य के सितारे कौन से मिलते हैं, जन्म का भाग्य, सम्मान का भाग्य और प्राप्तियों का भाग्य, है ना। क्योंकि डायरेक्ट हमारा जन्म बाबा से होता है, बाबा में स्वयं परमात्मा हमारा भाग्य विधाता हमें दिव्य जन्म देता है। तो जन्म होते ही हमें दिव्य बुद्धि मिल जाती है। सबसे पहली बात क्या मिलती है हमको, दिव्य बुद्धि मिल जाती है। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं, दिव्य बुद्धि माना एक तो बुद्धि हमारी लौकिक बुद्धि, जो हमारी बुद्धि थी जिसमें हम अपने आप को क्या समझते थे, जो मेरा नाम है, जैसे मैं सतीश गुप्ता डॉक्टर, मेरा प्रोफेशन हार्ट स्पेशलिस्ट, है ना, या मेरा घर, मेरे संबंधी, ये थी लौकिक बुद्धि। इसे कहते तमोप्रधान बुद्धि भी कह सकते हैं, जिसमें देह का ही भान था, देह के संबंधों का भान था, देह के स्वभाव संस्कार का भान था और देह के पदार्थों का भान था। 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ। ये 4 बातें हमारी बुद्धि में भरी हुई थी जो लौकिक बुद्धि थी। बाबा क्या करता है आकर के, बाबा इस बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना देता है। बाबा हमको इस ज्ञान, जैसे पहले दिन आते हैं हमें बाबा क्या करता है, ABCD सिखा देता है। क्या सिखा देता है, ABCD। ज्ञान का विस्तार तो बहुत बड़ा है किंतु तो सार रूप में ज्ञान क्या है, ABCD है। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कृष्ण संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो मैं एक आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूं जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। मैं परमपिता परमात्मा की संतान, वो भी एक दिव्य सितारा है और सर्व संबंध मेरे उसके साथ हैं। मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, गुरु का संबंध, बंधु सखा साजन सजन का संबंध मेरा उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा। ये संसार एक ड्रामा है, एक नाटक है जिसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और परमात्मा इस ड्रामा को कर्म सिद्धांत के अनुसार चला रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। जब मैं कर्म सिद्धांत की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, हम अपने परिवार में रहते हैं, हमारे साथ हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी है ना, बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे संबंधी पड़ोसी रहते हैं। वो हमें हमारे साथ क्यों आए, या हमारे साथ कोई तो हमें बहुत सुख दे रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है। हमारा संबंधी होकर के, हमारी पति या पत्नी, हमारा बच्चा होकर के नहीं, या हमारे माता पिता होकर के भी हो सकता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिनको हमने सुख दिया हुआ वो हमें सुख दे रहे हैं, जिनको हमने दुख दिया हुआ वो हमें दुख दे रहे हैं, और परमात्मा इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा कहीं दूर पढ़ता है, कई साल से पढ़ रहा है बाहर, उसके पिता को पता लगता है बच्चा बीमार हो गया है, कई एक दो महीने स्कूल नहीं जा पा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो बाप जाता है, बच्चे के पास जाता है, सबसे पहले तो उसका इलाज कराता है, नहीं बीमार है बच्चे का इलाज करेगा, पहले तो डॉक्टर को बुलाकर उसका दिखाएगा, जब तबीयत उसकी अच्छी हो जाएगी तो कहेगा बेटा तुम यहां तुम्हारी केयर अच्छी नहीं होती है, तुम अभी घर चलो, यहां से तो वहीं पढ़ लेना। फिर कहता पापा मेरे को तो पैसे देने, इसके पैसे देने, उसके पैसे देने, तो क्या बाप क्या करता है, खुद जाके पैसे नहीं देता है, उसके हाथ में पैसे देता है कि चलो मेरे साथ चलो, किस किस के पैसे देने हैं, इसके 500 रुपए देने हैं, उसके हाथ में देता है 500 रुपए, उसको अपने उसका दिलवाता है उससे, अपने हाथ से नहीं देता है, किसी के 1000 देने, किसी के 1500 देने, किसी के 200 देने, सबके पैसे उसके हाथ से दिलवा देता है, और फिर कहता है पापा मुझे इससे लेने भी हैं, इन इनसे लेने हैं, तो फिर बाप साथ में चलता है, वो देता नहीं तो बाप क्या करता है, डांट लगा कहता है इसको दो इसके पैसे, है ना। तो ऐसे ही बाबा हमको करता है, जब बाबा आता है तो पहले आके क्या करता है हमको, पहले तो हमें दवाई देता है, इलाज करता है ना, आत्मा में शक्ति भरता है, दिव्य बुद्धि देता है, फिर दिव्य बुद्धि देने के बाद क्या करता है, फिर हमारे अकाउंट चुकतू कराना शुरू करता है, पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से, भाई बहनों से, है ना। तो जो दुख दिया हुआ है दुख, वो हमें दुख दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास सहन शक्ति आ जाती है, परखने की शक्ति आ जाती है, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, विस्तार बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आ जाती है, समेटने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, तो वो हम उसको अब सहन कर सकते हैं, पहले सहन नहीं कर सकते थे, बाप शक्ति देता रहता है, हम सहन करते रहते हैं, तो अब बाप चुकतू कराता है हमारे हिसाब से, और फिर घर लेके जाता है। तो ये ड्रामा है, इसलिए जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो ये जो एबीसीडी है, इस एबीसीडी के चिंतन में हमारा क्या होता है, इससे दिव्य बुद्धि में ये भर जाता है, अभी ये दिव्य बुद्धि है जिसमें एबीसीडी भर गया हो, नहीं तो क्या होता है, हम जब भी अपने बारे सोचते हैं मैं देह हूं, देह याद आती है, नाम याद आता है, प्रोफेशन याद आता है, देह के संबंधी याद आते हैं, देह के पदार्थ याद आते हैं, प्रॉपर्टी हमारा जो सामान है, घर है, मकान है, पैसा है, और देह के स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव काम विकार है, देह का स्वभाव क्रोध है, देह का स्वभाव लोभ है। जब अपने को देह समझते तो क्या होगा, किसी दूसरे को भी देह समझेंगे, उसकी तरफ आकर्षण होगी, अपने देह के लिए कुछ चाहिए लोभ आएगा, संबंध बने मोह आएगा, मेरे पास काफी चीजें इकट्ठी हो गई, लोग मुझे पूछते हैं, मेरे पास अहंकार आ जाएगा, और मेरी चीज को कोई डिस्टर्ब ना करे, जो जो चीज मेरे पास है उससे क्रोध आएगा। तो इस तरह से पांच विकार जन्म ले लेते हैं, और देह का संस्कार क्या है, देह का संस्कार आलस्य है, संस्कार आदत है देह की, अपने को देह समझ लिया आलस आएगा, छोड़ो ना अभी अमृत वेला, देर से कर लेंगे, 4 बजे नहीं आज 5 बजे उठ जाते हैं, 4:30 उठेंगे, चलो आधा घंटा सो जाते फिर आधे, अलबेलापन है, देह का संस्कार ही है अलबेलापन, आदत है देह की, देह का आदत है दूसरों में दोष निकालना, देह की संस्कार है बदलने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय लगना, ये देह की आदत है। हर बात में जल्दी करना और ईर्ष्या करना, ये देह के संस्कार है और देह के पदार्थ आपको पता ही है। तो बाबा ने दिव्य बुद्धि में भर लिया, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, एक एक संबंध की अनुभूति उसके साथ हम कर सकते हैं। और ये संसार एक फिर क्या है, देह का स्वभाव, ये तो देह का स्वभाव, देह का स्वभाव तो वो, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव ये सात गुण है, ज्ञान, आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है, स्व माने आत्मा, भाव माने भाव, मैं आत्मा हूं इस स्वरूप में टिके हुए रहना, मैं चमकता सितारा हूं, सामने भी जो बैठे हैं वो चमकते सितारे हैं, हम एक चमकते सितारे की संतान है, सुप्रीम चमकता हुआ सितारा जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है, आज की मुरली में लाइन थी ना, जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है, जो सातों गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर है। तो देह का जो स्वभाव, देह का जो आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां, और देह का आत्मा का संस्कार क्या है, अलर्ट एक्यूरेसी विश्वास, आत्मा का संस्कार है, जब अपने को आत्मा समझेगा अपने आप विश्वास आता है, ट्रस्ट आता है, निश्चय आता है, मैं तो मर नहीं सकता, अजर अमर हूं, अविनाशी हूं, विश्वास आ जाता है, निश्चय आ जाता है, बेफिक्र हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, धैर्यता आ जाती है, और सबसे प्यार की फीलिंग आती है, और साथ साथ रहम दिल, ये आत्मा का संस्कार है आत्मा का, और साथ साथ कल्याणकारी। देखो इंसानों ने ही धर्मशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल बनवाई है ना, और किसी ने बनवाई क्या? तो मनुष्य आत्मा की ये विशेषता है, संस्कार है उसका। रास्ते में कुछ पत्थर पड़ा होगा, कोई आम आदमी जो ज्ञानी नहीं है वो भी क्या करेगा, पत्थर को साइड में करने की कोशिश करेगा, किसी और को लग ना जाए, कोई कांटा पड़ा होगा उसको साइड में कर दो, मेरे को तो मैं बच गया, इसकी दूसरा दूसरे को ना लगे। तो रहमदिर और विश्व कल्याणकारी का सबका संस्कार है, आत्माओं का संस्कार। और आत्मा के पदार्थ क्या है, प्रॉपर्टी के आत्मा की, ये दैवी गुण, सत्यता पवित्रता निर्भयता अंतर्मुखता एकांत प्रिय एकाग्रता एक नामी एक व्रता, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, सरलता नम्रता उदारता मधुरता धैर्यता गंभीरता संतुष्टता हर्षित मुक्ता दृढ़ता सहनशीलता आज्ञाकारी वफादार ईमानदार फरमानबरदार, ये जो दैवी गुणों की लिस्ट है ना, ये सारे सारे आत्मा की प्रॉपर्टी है। तो अब हमारी बुद्धि में बाबा ने ये भर दिया है, ये इसको कहते दिव्य बुद्धि, दैवी गुणों पर आधारित बुद्धि, दैवी दिव्य बुद्धि। तो जब हम अमृत वेले बैठते हैं, जैसे इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, नॉर्मली हम एक इसे पावरफुल अमृत वेला के बारे में बताने से पहले ये थोड़ी बातें मैं आपको शुरू में बता रहा ताकि आप इसको समझ सकें, नॉर्मली हम 15 विचार एक मिनट में करते हैं, जिसमें 7-8 विचार कॉन्शियस विचार होते हैं, मतलब प्रेजेंट के होते हैं अभी के, और 7-8 विचार पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के, 2-3 विचार फ्यूचर के होते हैं, टोटल एवरेज 15 विचार हम करते हैं। किंतु जब देह के बारे सोचने लगते हैं तो क्या होता है, देह देह के संबंध देह के स्वभाव संस्कार देह के पदार्थ विचार बढ़ जाते हैं। अभी भी आप सोच के देख लीजिए देह के बारे में, अपनी देह के बारे में, मैं भी 50 साल का हो गया, मेरे घुटने दर्द करते हैं, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, पता नहीं मेरा क्या होगा, डॉक्टर को जाकर दिखाऊंगा, है ना, ये दिखाएंगे, है ना, नहीं ऐसा होता है, विचार बढ़ गए ना, संबंधों के बारे सोच लो, बच्चों के बारे सोच लो, अपने संबंध जो भी हैं आपके, اپنے سینٹر کے بارے میں بہنیں سینٹر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وچار بڑھ جائیں گے نا. تو دیہ کے سمبندھ کے بارے سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ وچار بڑھ جاتے ہیں. دیہ کے سبھاؤ سنسکار کے بارے سوچنا شروع کرو, میرا سبھاؤ تو بہت جلدی بازی کا ہے, مجھے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے تو اس سے وہ میرے کو تنگ کرتے ہیں. تو دیہ کے سبھاؤ کیا ہے؟ یہ جو آتما کا سبھاؤ کیا ہے, یہ سات گن. تو جیسے ہی ہم دیہ کے سبھاؤ سنسکار, دیہ کے سمبندھ, دیہ کے سبھاؤ سنسکار, دیہ کے پدارتھ کے بارے سوچتے ہیں تو وچار بڑھ جاتے ہیں اور اس سے من میں چنتا پیدا ہوتی ہے. 20 ہو گئے تو چنتا پیدا ہو گئی, 25 ہوئے تو بھے پیدا ہو گیا, 30 ہوئے تو چڑچڑا پن آنے لگتا ہے, 35 ہوئے تو غصہ آنے لگتا ہے. تو یہ ہمیں جیسے سے ہم اس طرف جاتے ہیں تو ہمارے وچار بڑھتے جائیں گے اور ہم اندر تھکان محسوس کرتے ہیں, سر بھاری ہو جاتا ہے. اس کی بجائے ہم اگر اپنے کو آتما سمجھ کے پرماتما کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں, اے بی سی ڈی کو ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں, آتما بابا کنیکشن ڈراما, جتنا اس کی گہری انوبھوتی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارا دن اس کا ابھیاس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے ہمارے وچار 15 کی بجائے 10 ہونے لگتے ہیں. کیونکہ چار وچار مانے آتما, پرماتما, سرو سمبندھ باپ سے انوبھو کرنا اور ڈی فور ڈراما, جو ہوا اچھا ہوا, جو ہو رہا اچھا, جو ہونے والا بہت اچھا. تو وچار کم ہونے لگتے ہیں, 10 وچار ہوئے, جب 8 وچار ہوئے تو شانتی محسوس ہونے لگتی ہے, 6 ہوئے تو اپنی غلطیاں محسوس ہونے لگتی ہیں, نہیں میں نے اس کو ایسے بولا نا, وہ غلط بولا, غلطی اس کی نہیں تھی میری غلطی تھی, میں نے اہنکار میں آ کے اس کو بولا. تو اپنے اندر اپنے آپ ہی اندر سے روحانی پیار پیدا ہونے لگتا سب کے پرتی. اور جب چار وچار آ گئے تو اتندریہ سکھ کی انوبھوتی ہونے لگتی ہے. اتندریہ سکھ مانا, ایک تو سکھ ہوتا ہے کھانے کا, دیکھنے کا سکھ, کھانے کا سکھ, بولنے کا سکھ, سننے کا سکھ, چھونے کا سکھ, یہ تو اندریوں کا سکھ ہو گیا. اتندر سکھ مانا آتما کا پرماتما ملن کا سکھ, آتما سے پرماتما ملن کی انوبھوتی کا سکھ, اتندریہ اندریوں سے اوپر کا سکھ, روحانیت کا سکھ. تو وہ سکھ کی انوبھوتی جب ہوتی ہے, جیسے اے بی سی ڈی میں کیا ہے, آتما ہے, بابا ہے, کنیکشن ہے, ڈراما ہے, جب چار ہی وچار رہ گئے تو کیا ہوگا, آپ کو اتندر سکھ کی انوبھوتی ہونے لگتی ہے, ہم اس دیہ کی دنیا سے اوپر اٹھ جاتے ہیں, سوکشم وطن کا انوبھو کرنے لگتے ہیں, ارتھات ایسا فیل کرتے ہیں جیسے اس دنیا سے ہم پرے, اس دنیا کے وچار چلنے بند ہو جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کے نزدیک اور پرماتما کے نزدیک اپنے آپ کو پانے لگتے ہیں. جب دو وچار رہ جاتے ہیں صرف, اے اور بی, میں بابا کا, بابا میرا, تو آنند کی استھتی کا انوبھو ہونے لگتا ہے, ایک دم آنند کی استھتی. اور جب ایک ہی وچار رہ جاتا ہے بابا, تو وہ سرو شکتیوان کی اسٹیج ہے, ماسٹر سرو شکتیوان کی اسٹیج ہے, اس میں صرف ایک ہی وچار ہے بابا. تو جب ہم چار وچار سے کم وچار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سوکشم وطن میں پہنچ جاتے ہیں, دو وچار ہوتے ہیں تو بابا کی گود میں پہنچ جاتے ہیں, باپ دادا کی گود میں پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ دو وچار مانا ہی کیا ہے, میں اور بابا. آپ کو کچھ سامنے کوئی گاسکٹ رکھ کے بیٹھنے کی آوشیکتا نہیں ہے, کسی بابا کے مستک پہ دیکھنے کی آوشیکتا نہیں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ انوبھو کرتے رہو, اے بی سی ڈی کے چنتن اور منتھن میں چلے جاؤ, اس کی چرننگ کرتے جاؤ, اس کی گہرائی میں کھوتے جاؤ, ہر کام کرتے ہی چنتن کرتے رہو, تو اپنے آپ چلتے پھرتے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم سوکشم وطن میں چل رہے ہیں, بابا میرے ساتھ چل رہا ہے, آنند کی استھتی چلتے پھرتے ہونے لگتی ہے, وچار اپنے آپ کم ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جب ہم دو اور جب ایک وچار ہو جاتا بابا خالی, تو ہم سر انت پرم دھام میں پہنچ جاتے ہیں. بابا, صرف بابا, یہ بھی آتما باپ کے پیار میں لولین ہو گئی, یہ بھی بہان نہیں رہا کہ میں کون, بس بابا, گیان کا ساگر, پوترتا کا ساگر, شانتی کا ساگر, پریم کا ساگر, سکھ کا ساگر, آنند کا ساگر, بےحد ساگر میں سما گئے, تب ہم پرم دھام کی استھتی میں پہنچ جاتے. ऐसी स्थिति कब बनेगी? जब हम सारा दिन, ये बाबा की श्रीमत है। बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा ने कल बताया, परसों मुरली में बताया, बाग के रूप में बाबा ने क्या दिया हमको? वर्षा दिया। सुना ना सबने, बाप के रूप में क्या दिया बाबा ने? कितना ऊंचा वर्षा दिया है और 21 जन्मों तक के लिए दिया है। क्या वर्षा दिया बाबा ने? स्वर्ग का वर्षा तो बाद में मिलेगा, अभी कौन सा वर्षा दिया है? कौन सा वर्षा दिया है? ज्ञान। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान का वर्षा मेरे को दे दिया, मुझे ज्ञान स्वरूप बना दिया है। बाबा एवर प्योर है, मुझे पवित्रता का वर्षा दे दिया, शांति का वर्षा दे दिया है, प्रेम सुख आनंद और शक्तियों का वर्षा दे दिया। अब जो मर्जी हो जाए मैं सहन कर सकता हूं, कुछ भी हो जाए सामना कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात, पहाड़ जैसी बात हो उसको राई बना सकते हैं, समेट सकते हैं, परख सकते हैं, निर्णय एक सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं है माइंड, अभी क्लियर है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें मर्यादा की लकीर बाबा ने दी है, इस लकीर के अंदर रहना है। इस लकीर के बाहर कोई चीज है, श्रीमत के बाहर है, मर्यादा की लकीर के बाहर है, मुझे वो नहीं करना है। निर्णय शक्ति एकदम तैयार है, कोई कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में, राइट क्या है रॉन्ग क्या है एकदम सेकंड में पता है। ये बाबा ने वर्षा दिया है हमको। कछुए के समान हम अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, विस्तार को सार में समा सकते हैं। कितनी भी बड़ी बात हो, काम किया, बोलना है तो बोले, नहीं तो बाबा के पास परमधाम चले गए, सूक्ष्म में चले गए। काम करना है तो किया, नहीं तो बैठे बाबा की याद में खो गए। चल रहे हैं, चलने में कुछ और तो करना नहीं, बाबा की याद में खोए हुए चल रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने हमको विस्तार को सार में समाने की शक्ति दे दी है, पैकअप करने की, समेटने की शक्ति दे दी है। तो ये बाबा का वर्षा है, संगम पे ये वर्षा हमको बाबा से मिला है। जितना ये वर्षा अभी हम इसको यूज करते हैं, जितना इस वर्षे को, उतना भविष्य में हमारा उच्च पद होता है, उतने हमारे अधिक विक्रम विनाश होते हैं और उतना लंबा समय हम राज्य अधिकारी बनते हैं। 21 जन्म जो बाबा ने कहा ना, उसमें हम राज्य अधिकारी बनना है, अभी स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में राज्य अधिकारी। शिक्षक के रूप में बाबा ने हमें क्या दिया? ये शिक्षा दी ना, सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना अधिक हमें ये मिलता है उतना ही स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी माने आत्मा का राज हो जाता है मन बुद्धि संस्कार पर। क्योंकि आत्मा क्या करती है? आत्मा बुद्धि में ज्ञान भर गया, ये सातों गुण। अब बुद्धि में जब सात गुण भर गए तो मन में कौन, मन में क्या है? स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो फिर आत्मा स्मृति में ये भरना शुरू हो जाता है, ये ABCD। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होने लगती है, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होने लगती है, और संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी आने लगते हैं। तो मन को नरिशमेंट मिली ना, तो अब मन को अच्छा अच्छी अच्छी अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, अशुभ भावना मिलती है, आत्मिक वृत्ति मिलती है, स्मृति में ये ABCD ज्ञान भरने को मिल जाता है, बाबा के साथ के अनुभव स्मृति में भर जाते हैं, उनके अनुभव भी मूर्त बन जाते हैं। तो क्या होता है, अब मन भटकता नहीं है, मन एकाग्र होने लगता है। बुद्धि के साथ, बुद्धि तो बाबा ने पहले ही चेंज कर दी, दिव्या बना दिया, अब साथ में मन भी उसके साथ जुटने लगता है, एकाग्रता होने लगती है। अब क्या होता है, जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं तो क्या होता है, तब हमारा चलते फिरते उठते बैठते बाबा से लिंक जुटा रहता है, हर कर्म करते स्थिति अच्छी रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एक कागज धूप में पड़ा रहे सालों से पड़ा हुआ, जलता है क्या? जलता है क्या? धूप में पड़ा, कभी धूप में कभी कागज जलता है क्या? जलता नहीं है। किंतु 10 साल से पड़ा है, जला नहीं। और मैं एक लेंस लेता हूं हाथ में और उस कागज पे फोकस करता हूं तो क्या होता है, सूरज की किरणों को फोकस करें तो क्या होता है, कागज जल जाता है ना, एक मिनट में जल जाएगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, جو کام 10 سال میں نہیں ہوا کتنی دیر میں ہو گیا؟ 1 منٹ میں. کنتو کب ہوگا؟ جب لینس گندا ہو تو, مٹی لگی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا. اچھا لینس ہم نے صاف بھی کر لیا کنتو ہاتھ ہل رہا ہے, ایسے سے ہل رہا ہاتھ, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جلے گا کاغذ؟ نہیں جلے گا نا. تو ہم کو بدھی ہے لینس اور ہاتھ ہے من. تو جو وکرم ہم نے, جو وکرم کیا چیز ہے, وکرم کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہم نے آج تک اس جنم میں اور پچھلے 63 جنموں میں کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار کے وش ہو کے جو کام کیے ہیں, یا اس کے بال بچے بتائے نا, یہ جو آلس البیلاپن شک انومان چنتا بھئے جلدی بازی کرنا ارشا دویش کرنا, یہ اس کے بال بچے ہیں 5 وکاروں کے ہیں, یا ان کے وش میں آ کر کے ہم نے جو کرم کیے ہیں وہی پاپ ہیں. اور جو بھی ہم نے کیا ہے, جو بھی ہم نے بولا ہے, جو کچھ ہم نے دیکھا ہے, وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے, سب میرے اندر ریکارڈ ہے, سیلس میں ریکارڈ ہے, برین کی سیلس میں ریکارڈ ہے. اور جو کچھ ہو گیا وہ ریکارڈ ہو گیا. اور جب وہ فائلیں, جب وہ ویکتی میرے سامنے آتا ہے جس کے سامنے کرودھ کیا, جس کے ساتھ, جس کے پرتی بری درشٹی رکھی, جس کے پرتی میں نے, جو چیز سے میں نے کوئی دھوکہ دیا اس کو, وہ ویکتی سامنے آتے ہی وہ فائل کھل جاتی ہے اور پروش ہو کے وہی کام دوبارہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. کسی سے آپ نے 20 سال پہلے جھگڑا کیا ہو, یا 20 سال پہلے کسی ویکتی نے آپ کو بہت کرودھ کیا ہو, اور 20 ابھی آپ گیان میں چل رہے ہیں, ابھی آپ نے کرودھ کرنا چھوڑ دیا, اور 20 سال بعد وہ ویکتی واپس سامنے آئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر آپ کو؟ وہ فائل کھل جائے گی, اس نے میرے کو کرودھ کیا تھا, تو آپ کا موڈ آف ہو جائے گا, اس کو دیکھتے ہی موڈ آف ہو جائے گا. جبکہ ابھی پتا ہے میں بھی آتما ہوں, یہ بھی آتما ہے, پر وہ فائل جو اندر جمع ہے وہ آپ کو اب بھی آپ کا موڈ آف کر دے گی, یا آپ کو غصہ آ جائے گا اس کو دیکھ کے. یہ پاپ کرم ہم سے, ہمیں اچھی بھلی ہماری استھتی کو خراب کر دیتے ہیں, مطلب ہمیں اچھے کام سے ہٹا دیتے ہیں. اس لیے ایک بھجن تھا بچپن میں ہم گاتے تھے, میرے پاپ کرم یہ تجھ سے پریت نہ کرنے دیتے ہیں, کبھی جچاؤں ملوں آپ سے روک مجھے یہ لیتے ہیں, کیسے پربھو جی آپ کے درشن پاؤں میں. جب تک یہ پاپ کرم میں وناش نہیں کروں, تب تک میں پرماتما سے, اتنے میٹھے بابا سے سچا ملن نہیں منا سکتے ہیں. یہ پاپ کرم وناش ہونے کے بعد ہی ہم باپ سے ملن منا سکتے ہیں. جیسے 3 طرح سے ملنا ہو سکتا ہے, سپوز یہاں اس روڈ سے عبد الکلام جی جا رہے ہیں, ڈاکٹر عبد الکلام ہمارے اس میں آئے اور وہ اس میں سے جا رہے ہیں, 3 طرح سے ان سے مل سکتے ہیں. ایک تو یہ ملن ہو سکتا ہے کہ ہم, میں گیا دروازے کے باہر, ان کو ایسے, وہ جا رہے ہیں تو میں نے ان کو ہاتھ ایسے سے کیا, انہوں نے بھی ایسے کر دیا, نہیں کیا, وہ چلے گئے, میں نے کہا مل کے آ گیا. ایک تو یہ ملنا ہوا. دوسرا ملنا ہوا, میں گیا بھیڑ میں سے, گیا ان کے جا کے ان کا ہاتھ, ان سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے آ گیا. ان کی اچھا تھی نہیں اچھا تھی, کنتو میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں ملا کے اور میں آ گیا, ٹھیک ہے. تیسرا ہے, میں گیا ان کے پاس, انہیں کہہ رہے ڈاکٹر گپتا آپ تو بہت دنوں سے ملے نہیں, آؤ میرے کو آپ سے بات کرنی ہے. پھر ہم گئے ان کے جہاں ٹھہرے ہوئے, ان سے بات کیے, گھنٹہ بات ہوتی ہے, مجھ سے حال پوچھتے ہیں, میں ان کا حال پوچھتا ہوں. تو 3 پرکار کا ملنا ہوا نا, کون سا ملنا ہم کو چاہیے؟ ہم لوگ بھی ایسے ملتے ہیں, امرت ویلے یوگ کرنے بیٹھتے ہیں نا بابا سے, ایک تو بہت مشکل سے پہلے تو یدھ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں پھر اس کو بیٹھ کر کے ہم آرام سے یہ چنتن کرنا شروع کرتے ہیں, میں آتما ہوں, پرماتما کے سنتان ہوں, ہے نا, ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں دھیرے دھیرے, کرتے 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 پھر تھوڑی نیند آ جاتی ہے نا, اٹینشن کوئی اور وچار من میں آ جاتا ہے, پھر ہم کوشش کرتے ہیں, نہیں نہیں امرت ویلا کرنا ہے, بابا نے کہا امرت ویلا پاور فل کرنا ہے, پھر ہم اٹینشن سیدھا ہو کے بیٹھتے ہیں, آنکھوں کو تھوڑا مل لیتے ہیں, تھوڑا سا فریش ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پھر دھیان کرنا شروع کرتے ہیں, پھر کرتے 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 ایسے کرتے کرتے بہت دیر یوز چلتا ہے, ایسے کوئی اور یاد, کوئی وچار آ جاتا ہے من میں, پھر اس کے بعد 4:40 پہ ہم لوگ جا کے تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن لگتا ہے, सूक्ष्मवतल में पहुंचते हैं बाबा के पास, बाबा को देखा तुरंत नीचे आ जाते हैं, 4:45 होने वाले ना, 1 सेकंड में देखा वापस नीचे आ जाते हैं, है ना। चलो हो गया हमारा अमृत वेला पूरा हो गया, है ना, गीत बज जाता है फिर हम अमृत वेला पूरा हो गया, है ना। दूसरा अमृत वेला होता है हम बाबा के पास जाते हैं, जाकर के बाबा के सामने जाते हैं, बाबा को बाबा से बात करते हैं, उल्हाना देते हैं बाबा को, और करके 2-3 मिनट बाबा के पास ऐसे रह के नीचे आ जाते हैं। और तीसरा हम जाते हैं तो बाबा कहते हैं आओ बच्चे आओ आओ बच्चे, मैं तो तुम्हें कितनी देर से इंतजार कर रहा था, जल्दी आओ आओ मेरी गोद में समा जाओ, है ना। फिर बाबा से हम बातें करते हैं, बाबा हमको बात करता है ना। और फिर हम 40 मिनट ही बाबा की गोद में रहते हैं, 45 मिनट ही बाबा की गोद में रहते हैं। ये बाबा कहता नहीं बच्चे अभी जाओ तुम परमधाम जाके आओ, है ना। तो बाबा का सूक्ष्म शरीर वहां छोड़ के बाबा के पास हम परमधाम चले जाते हैं, 20-25 मिनट परमधाम में रहते हैं, 20 मिनट बाबा की गोद में रहते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो कौन सा अमृत वाला पावरफुल हुआ, मिलना कौन सा हुआ, लास्ट वाला। तो 90% लोग हम पहले वाला अमृत वाला करते हैं, है ना। तो कहते बाबा से मिले हम, मिले तो सही, प्राप्ति क्या हुई। अगर आपको दूध गर्म करना हो, आप गैस पे दूध भगोने में डालो, गैस पे रख दिया, रखा और यूं उतार लिया, तो उसमें कीटाणु भस्म हो गए क्या, दूध पीने के लायक बन गया, बना। ये चलो आपने रखा उतारा, 1 मिनट रखा उतार लिया, फिर तो तब भी दूध तैयार नहीं तो नहीं हुआ, पीने के लायक तो नहीं हुआ, उबले ना, रखो 5 मिनट रखो देखते रहो, फिर दूध उबले तो फिर जाके पीने लायक हुआ ना। तो ऐसे हमारे विक्रम विनाश होने में भी समय लगता है। बाबा के साथ हम एक एक रस हो जाएं, आग और दूध का मेल हो जाए, है ना। इसके लिए अब जो बाबा ने कहा इस मुरली में कहा, सारा दिन हमारा ये चिंतन चलना चाहिए, जन्म संबंध और प्राप्तियां, इस नशे में रहना चाहिए। आज की मुरली भी क्या थी, नशा, है ना, नशे में रहो। कौन हमें पढ़ा रहा है, रोज बाबा जो मुरली सुना रहा है उस नशे में रहो। कम से कम मुरली हमने एक बार सुनी, कम से कम मुरली हम 18 बार तो रिवाइज करें। सारी मुरली रिवाइज नहीं करो, एक पॉइंट ले लो उसका मंथन करते रहो। जैसे घास गाय घास खाती है, जुगाली करती रहती है, तो उसका मंथन उसका अनुभव करते रहो। मैं तो क्या करता हूं, पेशेंट देखता हूं ना, पेशेंट देखते हुए हॉस्पिटल में ही पेशेंट देखते हुए मुरली जेब में रहती है, एक पॉइंट निकाला उसको मन में डाल लिया, चिंतन करते रहे, पेशेंट देखते रहे, चिंतन करते रहे, बल्कि और अच्छा काम होता है, एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है। चिंतन करते करते बाप पेशेंट देखते हैं, है ना। पानी पीना, पहले मुरली का एक पॉइंट निकाल लिया, फिर मुरली देख लिया एक पॉइंट, वरदान देख लिया, फिर उसके चिंतन में खाना फल पानी पी लिया, फल खाना है तो उसके चिंतन में फल खाया, दूसरे पॉइंट के चिंतन में, लंच करना है तो उसके दूसरे चिंतन में खाया। तो ऐसे मुरली के पॉइंट्स बार बार जितना उसकी गहराई में टिकते जाएं, मुरली याद कैसे रहेगी। जब सुबह सुबह हम 45 मिनट वॉक करते हैं तो मुरली का एक पॉइंट निकाला, जेब से देखा, और उसके 5 मिनट उसी पॉइंट के चिंतन में वॉकिंग किया, पॉइंट मेरा हो गया, वो मेरे जीवन में समा गया। अब मान लीजिए मैंने 45 मिनट वॉक किया तो 9 पॉइंट्स मेरे बुद्धि में आ गए, और 9 पॉइंट्स में से कभी भी पूछ सकते हैं आप सारा दिन में, कभी भी मुझे सोते भी उठा के पूछे ना, मैं बता दूंगा कि बाबा ने आज ये कहा था। तो इस तरह से जब हम सारा दिन चलते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, श्रीमत और मर्यादा की लकीर पे चलते हैं, तो हम जब सोते हैं जाकर के रात को लेटर लिखते हैं बाबा को, सच्चे और साफ। मैंने बताया दिल बुद्धि रूपी, बुद्धि को दिल भी कहते हैं, तो बुद्धि रूपी लेंस अगर स्वच्छ है तो ही उसमें किरणें फोकस होती हैं। तो बुद्धि रूपी लेंस तब जब हम लेटर लिख के सारी बातें बाबा को बता देते हैं सोने से पहले, आज जो कुछ भी हुआ बाबा को मन बुद्धि में, जो भी आज मेरे साथ बीता, वो सब कुछ सच्चा सच्चा बता के साइन करके बाबा को, बाबा की याद में बैठ जाते हैं। बाबा को, बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है, उसका फैक्स नंबर है 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो कुछ बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, वो भी 0 हो गया ना, तो तुरंत फैक्स ऊपर पहुंच जाता है। तो تو بابا جیسے بابا نے بابا کو ہم نے دے دیا بابا آج ایسا ایسا ہوا تو میری دل سچی اور صاف ہو گئی. پھر لیٹر چارٹ بھر لیا بابا آج یہ میرا پوتا ملا اتنے گھنٹے میں نے آپ کو یاد کیا اتنے منٹ یاد کیا کس کو دکھ تو نہیں دیا چارٹ بھر لیا پھر بابا کی یاد میں گود میں چلے گئے بابا کی گود میں. ہمارا سونے کا بیڈ کہاں پر ہے جو ہمارا بیڈ ہے نا لوکک بیڈ ہے نا جس پہ ہم سوتے ہیں شری کو وہ تو گیرج ہے یہ کار ہے وہ بیڈ ہمارا گیرج ہے. گیرج پہ باڈی کو پارک کیا کار کو پارک کر دو اور بیڈ روم ہمارا کہاں ہے سوکشم وطن اور بیڈ کہاں ہے بابا کی گود تو بابا کی گود میں جا کے سو اور سونے سے پہلے بابا کو پتا ہے کہ بابا کو ہم سنکلپ دے دیتے بابا مجھے اتنے بجے اٹھا دینا تین بجے اٹھا دینا ساڑھے تین اٹھانا اور مجھے پکا میں نے دیکھا پچھلے کتنے سالوں سے کبھی ہم نے بابا کا گیت سن کر کے نہیں اٹھے ہیں گیت سننے سے پہلے گیت بجنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں گیت بعد میں بجتا ہے یا کبھی دو بجے بھی کہا تو دو بجے بھی ایکیوریٹ آنکھ کھل جاتی ہے جتنے بجے کا ٹائم ہم دیتے ہیں اتنے بجے آنکھ کھلتی ہے بابا اٹھا دے گا اور اٹھتے ہی پھر بابا گڈ مارننگ کر کے اور بابا کی برش کر کے فیس کو فریش کر کے سستی نہیں اور پھر بال کو کم کر کے پھر بابا کی یاد میں بہت اچھے سے پھر اچھے سے بیٹھ گئے اور پھر اے بی سی ڈی کی چنتن میں چلے گئے اس کا سوروپ بنتے گئے آتما چمکتا ہوا ستارہ میں آتما سے سات گن نکل رہے ہیں ساری باڈی میں جا رہے ہیں پرماتما کی سنتان پرماتما سات گنوں کا ساگر ہے تو سات گنوں کا ساگر وہ ساگر مجھ سے مجھ میں ساتوں گن آ رہے ہیں اور ساری سارے تن میں بھر گئے جیسے لائٹ بھر گئی لائٹ اور مائٹ جیسے بابا نے کہا لائٹ مائٹ کا انوبھو لائٹ مائٹ ہاؤس بن کے بیٹھو بھر گئے اس میں اور پھر کیا ہوگا جب لائٹ مائٹ بھر گئے تو کیا ہوگا آٹومیٹک اے بی سی کا چنتن کرتے میرے وچار کیا ہو جائیں گے چار تو میرے ویسے ہی تھے رات میں بھی چار ہی تھے صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم گہری نیند سے اٹھتے ہیں گہری نیند میں ہمارے وچار کتنے ہوتے ہیں دو تین وچار ہوتے ہیں اس لیے امرت ویلے کا سمے صرف ایسا ہے جس سمے ہم دو تین وچار میں سارے واتاورن میں دو تین وچار ہوتے ہیں میرے اندر بھی دو تین وچار اور واتاورن بھی ستو پردھان ہوتا ہے دو تین وچار والا ہی اس میں آتمائیں سب سوئی ہوتی ہیں سمو پردھان آتمائیں سب سوئی ہوئی ہیں صرف پرکرتی اور میں اور بابا تین چیزیں ہیں پرکرتی بھی ستو پردھان روپ میں ہے بابا تو ہے ستو پردھان ساتو گنوں کا ساگر ہے میں آتما ستو گنی بن گئی ہوں تو ستو گنی ستو پردھان پرکرتی اور ستو پردھان ساتو گنوں کا ساگر بابا تو اس سمے ایک دم کنیکشن لگ جاتا ہے اور میرے وچار دو تین وچار چار وچار تو ہوتے ہی ہیں تھوڑی دیر میں دو وچار ہو جاتے ہیں مطلب میں بابا کی گود میں چلا جاتا ہوں اور بابا کی گود میں جانے سے کیا ہوتا ہے اس سمے میری استھتی کیا ہوتی ہے میرے اندر ہارمونس خوشی والے ہارمون نکلنے لگتے ہیں آنند والے ہارمونس نکلنے لگتے ہیں اور پھر وہ خوشی والے ہارمون آنند والے ہارمون ایسا محسوس کراتے ہیں کہ میں اس شریر سے پرے سوکشم وطن میں ہوں بابا کی گود میں. اور پھر ہم جب بابا کی گود میں ہیں تو اس ایکسٹیسی آنند مانا ایکسٹیسی تو اس میں ہم دیہ بالکل اشریری ہو جاتے ہیں ہم دیہ سے پرے چلے جاتے ہیں اور جیسے ہم دیہ سے پرے ہوتے ہیں سول دیہ سے پھر سوکشم دیہ سے پرے ہوتے ہیں پرم دھام میں پہنچ جاتے ہیں مگر ایک وچار سے بھی کم صرف بابا. اور جیسے ہم بابا کی اسے کہتے جوالا مکھی یاد ایک ہی سنکلپ بابا اس میں میرے وکرم وناش ہونے لگتے ہیں ارتھات پرانی سمرتیاں ختم ہونے لگتی ہیں. جیسے اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا کوما میں کوما سے اٹھتا تو کیا پوچھتا ہے میں کون ہوں آپ کون ہیں میں کہاں ہوں. تو یہ ایک سے کم کی استھتی وہی استھتی ہے جیسے کہ آپ اس دنیا سے مر گئے صرف بابا. اور اس میں یہ نئی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے دماغ میں آتما ہوں پرماتما کیونکہ سب آتما ہی ہیں بابا ہے اور میں پرماتما ہے میں آتما ہوں چمکتا ہوا ستارہ ہوں پرماتما کی سنتان ہوں پرماتما بھی چمکتا ہوا ستارہ ہے اور شانتی کا ساگر ہے. وہ نئی ریکارڈنگ اور ڈی فور ڈراما ایک اس سمبندھ کی انوبھوتی کی فیلنگ سوکشم وطن میں پران دھام میں آتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو نئی سمرتیاں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اے بی سی ڈی نئی ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے پھر ہمارے اندر نئے سنسکار پیدا ہونے لگتے ہیں نئی سمرتیاں بننے لگتی ہیں اس کے حساب سے نئی ورتی بننے لگتی ہے نئی بھاونائیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو سرو کی بھاونائیں ब्राह्मण परिवार की भावनाएं, देवी देवता परिवार की भावनाएं, वो सुहाद्र की भावनाएं वो अंदर पैदा हो जाती है। और संकल्प, नए संकल्प, शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, अगर मुझे योग की, जैसे योग एक बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग होती है ना, उसकी बिल्डिंग की क्या होती है, गहराई होती है, नींव डालनी पड़ती है, फाउंडेशन डालनी पड़ती है, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग ऊंची बनती है, बिल्डिंग की ऊंचाई, बिल्डिंग की लंबाई और बिल्डिंग की चौड़ाई, है ना, ऐसे कहते हैं ना। योग की भी चार बातें हैं, योग की गहराई, योग की ऊंचाई, योग की लंबाई और योग की चौड़ाई। तो ये हमको कैसे बनानी है, जो योग की जो फाउंडेशन है, याद की जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो है चार तरह के संकल्प, शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प क्या है, सबसे पहला शुद्ध संकल्प है मैं कौन हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, परमात्मा की जो परम पवित्र परमात्मा उसकी संतान, ओरिजिनली प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा। सब लोग, दूसरी भी सब आत्माएं शुद्ध आत्माएं, ये शुद्ध संकल्प। मेरा पिता सदा ही परम पवित्र है, एवर प्योर है, ये शुद्ध संकल्प। जितना ये सत्य, अपने सत्य स्वरूप में टिकना, बाप के सत्य स्वरूप में टिकना, ड्रामा जो है, ड्रामा भी सत्य है, अविनाशी है, इसके सत्य स्वरूप में टिकना, तो जितना इसका अभ्यास करते जाते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहने का अभ्यास करते जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो बाबा की मुरली का जितना, बाबा की मुरली जो शुद्ध संकल्प है, फिर शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प पे आधारित शुभ संकल्प जितने अधिक करते हैं, और फिर उसके बाद हम शक्तिशाली संकल्प, जब सबके प्रति शुभ भावना पैदा हो जाती है, शक्तिशाली संकल्प पैदा होने लगते हैं, शक्तियां, आठों शक्तियां हमारे अंदर जमाने लगती हैं, और फिर कल्याणकारी संकल्प। जब हम सब शक्तिशाली रहते हैं, फिर कल्याणकारी, सबका कल्याण हो, हम शक्तियों से कल्याण कर सकते हैं। तो जितना ये इकट्ठा होने लगता है, ये मुरली से पैदा होता है, उतना ही हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ने लगती है, उतना ही फरिश्ता स्थिति बढ़ने लगती है, उतनी ही बीज रूप स्थिति बढ़ने लगती है। तो इस तरह करते करते हमारी स्थिति पावरफुल होने लगती है, ऊंचाई मतलब उतना अधिक हम योग की ऊंचाई में जा सकते हैं, उतना अधिक योग की ऊंचाई का अनुभव कर सकते हैं, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, परमधाम की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और योग की लंबाई क्या है कि आठ, कम से कम आठ घंटा ये संकल्प हम चलाएं, कम से कम सारा दिन में उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते आठ घंटा ये संकल्प करें। और योग की चौड़ाई क्या है, आठ संबंधों की अनुभूति बीच बीच में बाबा से करते रहें, आठ घंटा, कभी मां की अनुभूति, कभी बाप की अनुभूति, जैसे दादी जी बताते, कभी सखा की अनुभूति, टीचर की अनुभूति, गुरु की अनुभूति, है ना, कभी साजन की अनुभूति, कभी बच्चे की अनुभूति, कभी सर्जन की अनुभूति। मेरे अंदर जो विकार की बीमारियां थी, कुछ रोग थे शरीर के या मन के या तन के, वो सब खत्म हो रहे हैं बाबा की याद से। तो इस तरह से जब हम करते हैं, तो तब हमारा पावरफुल अमृत पैदा होता है, तब हर दिन हमें लगता है कि एक आज मेरा दिन कल से अच्छा था, फिर ये दिन और भी अच्छा। तब जो बाबा ने अभी हमें कार्य दिया है कि हमारे संकल्प व्यर्थ, संकल्प एक एक सेकेंड सफल होने लगता है, एक एक संकल्प समर्थ बनने लगता है, और तब जो बाबा को हम चार्ट दे सकेंगे, बाबा ने जो हमें कार्य दिया है, तब बाबा के हम क्या बन सकेंगे, वारिस। जो बाबा कहते हैं वारिस निकालो, तब इसे कहेंगे वारिस, जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना गवाए। एक दादी जी हमारे बीच आ गए, तो तब हमारी स्थिति ऐसी बनेगी जैसे हमारी दादी जी की स्थिति सदा रहती है, फिर हम ऐसे बन जाएंगे। ओम शांति।